नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने बिहार में पिछले 3 वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज प्रदेश भर में एक दिन एक घंटा एक साथ श्रमदान कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। एशिया के सबसे बड़े साहित्यिक महोत्सवों में से एक उन्मेष की आज से पटना में शुरुआत। देश विदेश के कई प्रतिष्ठित साहित्यकार और कला संस्कृति जगत की दिग्गज हस्तियां होंगी शामिल। और समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने बिहार में पिछले 3 वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है। आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजकर 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी है। पत्र में कहा गया है कि चुनाव कार्य से जुड़ा कोई अधिकारी अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं रहेगा। साथ ही यदि कोई अधिकारी किसी जिले में 3 वर्ष पूरा कर चुका है तो उसे स्थानांतरित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए 2,192 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 के साहिबगंज अरेराज बेतिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। 78 किलोमीटर से अधिक लंबी फोर लेन सड़क के निर्माण पर 3,822 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ये सड़क पटना और बेतिया के बीच संपर्क को और बेहतर बनाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खगड़िया और भागलपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार भागलपुर में 300 करोड़ रुपए की लागत वाली 59 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं खगड़िया में मुख्यमंत्री 500 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के साथ संवाद भी करेंगे। राज्य में मखाना उत्पादक किसानों को भी अब फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि राज्य फसल सहायता योजना के तहत पहली बार मखाना उत्पादकों से क्षतिपूर्ति दावे के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। मखाना उत्पादक किसान 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। श्रम संसाधन विभाग ने कामगारों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की है। जारी अधिसूचना के अनुसार अब अकुशल कामगारों को 428 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। वहीं अर्ध कुशल कामगारों को 444 रुपए, कुशल कामगारों को 541 रुपए और अति कुशल कामगारों को 660 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। नई दरें 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगी। राज्य के सभी नगर निकायों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने पटना में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पटना के हरेक गली में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इन कैमरों की मदद से सीवरेज, कचरा उठाव और गंदगी की निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक पटना मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। नगर विकास मंत्री ने कहा कि विभाग में विभिन्न कोटि के 15,628 पदों पर नियुक्ति भी जल्द होगी। स्वच्छता ही सेवा 2025 के 9वें संस्करण के तहत आज राज्यव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ श्रमदान कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस दौरान सभी लोग अपनी सुविधा अनुसार ग्राम पंचायत या निकट के शहरी ग्रामीण क्षेत्र जाकर श्रमदान में शामिल हो रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके लिए सभी पंचायतों में जगह चिन्हित किए गए हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए ला रहे हैं कैसे मोदी सरकार रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए नवाचारों के माध्यम से भारत के रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में नवाचार पर विशेष ध्यान दिया है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स पहल अप्रैल 2018 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था। यह अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, शिक्षा जगत, उद्योगों, स्टार्टअप्स और व्यक्तिगत नव प्रवर्तकों को शामिल करके रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करता है। महाबलीपुरम में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन और आईडेक्स का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास के लिए सरकार के सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, स्टार्टअप्स, व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षा जगत को शामिल करके आईडेक्स ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायता के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान किया है। अपने प्रभाव को मजबूत करते हुए सशस्त्र बलों ने आईडेक्स समर्थित स्टार्टअप्स और एमएसएमई से 2400 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 43 वस्तुएं खरीदी हैं, जो रक्षा तैयारियों के लिए स्वदेशी नवाचार में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। इस भागीदारी ने भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन समाधानों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने में मदद की। आईडेक्स ने पहले ही सकारात्मक परिणाम देने शुरू कर दिए, जिससे रक्षा प्रणालियों के विकास में योगदान मिला है। अनुपम और विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
दिल्ली की विशेष अदालत ने IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य आरोपियों को 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। इस मामले में आरोप तय करने के संबंध में इसी दिन फैसला आना है। आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में समस्तीपुर के विद्युत अधीक्षण अभियंता विवेकानंद के 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी अधिकारी के सिवान के 3, समस्तीपुर के 2 और पटना में 1 ठिकाने पर छापेमारी हुई है। प्राथमिक जांच में अधीक्षण अभियंता के पास आय से 2,13,00,000 रूपये से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने सारण जिले के पानापुर से पंचायती राज विभाग के कनीय अभियंता करीम रजा को 50,000 रूपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियंता पर चकिया पंचायत में विभिन्न योजना की मापी पुस्तिका और जियो टैगिंग करने के लिए घूस मांगने का आरोप है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। अगली पीढ़ी के GST सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करके ये सुधार नागरिकों को काफी राहत पहुँचा रहे हैं।
नए GST सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कॉमन अवशेष शोधन संयंत्र पर लगाने वाले GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इन संयंत्र पर टैक्स कम होने से उद्योगों को केंद्रीकृत कचरा प्रबंधन अपनाने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे प्रदूषण कम होगा और औद्योगिक क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। कम दरों से कचरे की छटाई, संयंत्र संचालन और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में हरित रोजगार भी पैदा होंगे। इसी तरह बायोडिग्रेडेबल बैग पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे ये बैग सस्ते और उपभोक्ता व दुकानदार प्लास्टिक बैग की बजाय इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित होंगे और प्लास्टिक प्रदूषण घटेगा। सरकार का मानना है कि कम GST से अनुसाधन व विकास, बायोपॉलीमर, स्टार्च आधारित और खाद सामग्रियों के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को राहत देने और सोलर पंप सस्ता करने के लिए GST परिषद ने सौर और पवन उपकरणों पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया है। अब सोलर कुकर, सोलर पावर जनरेटर, पवन चक्की और वायु जनरेटर पर भी सिर्फ 5% GST लगेगा। शिवांग, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
शारदीय नवरात्र के 4th दिन आज माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है।
संपूर्ण कर
हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी का यह स्वरूप कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाता है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सुबह से ही मंदिरों और शक्तिपीठों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। पूरा वातावरण माँ दुर्गा के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। एशिया के सबसे बड़े साहित्यिक महोत्सवों में से एक उन्मेष आज से पटना में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस महोत्सव का तीसरा संस्करण साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। देश विदेश के कई प्रतिष्ठित साहित्यकार और कला तथा संस्कृति जगत की दिग्गज हस्तियां इस कार्यक्रम में भाग लेंगी। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव विभिन्न विषयों पर केंद्रित होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अगले वर्ष होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की संभावित तिथि जारी कर दी है। 10वीं की पहली बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच आयोजित होगी। वहीं दूसरी बोर्ड परीक्षा 16 मई से 1 जून के बीच आयोजित की जाएगी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 9 अप्रैल के बीच होगा। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मुकाबले में सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 6 छक्के और 5 चौके की मदद से 70 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इसके साथ ही वैभव ने यूथ वनडे में कुल 41 छक्के पूरे कर लिए। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के उन्मुक्त चंद के नाम था। उन्मुक्त ने 21 मैचों में 38 छक्के लगाए थे। भारत ने सुपर फोर में बांग्लादेश को 41 रनों से पराजित कर एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। कल दुबई में खेले गए मैच में पहली बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लादेश की पारी केवल 127 रनों पर सिमट गई। भारत 12वीं बार एशिया कप के फाइनल में खेलेगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार में 84 साल बाद कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक के बाद ऐलान, बिहार में बनाएंगे महागठबंधन की सरकार। दैनिक जागरण ने लिखा है, चुनाव से पहले बिहार को 6000 करोड़ रूपये की परियोजनाएं। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, 2005 से पहले की सरकार ने काम नहीं सिर्फ विवाद पैदा किया। दैनिक भास्कर लिखता है, ले सुलगा पूर्ण राज्य के लिए युवाओं का हल्ला बोल, भाजपा दफ्तर फूंका, 4 की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने बिहार में पिछले 3 वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज प्रदेश भर में 1 दिन 1 घंटा 1 साथ श्रमदान कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। एशिया के सबसे बड़े साहित्यिक महोत्सवों में से एक उन्मेष की आज से पटना में शुरुआत। देश विदेश के कई प्रतिष्ठित साहित्यकार और कला संस्कृति जगत की दिग्गज हस्तियां होंगी शामिल। और समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।